ओम शांति। 1865 और 66 एक सन्यासी तोतापुरी नाम का बंगाल के दक्षिणेश्वर भूमि पर पधारा और यहाँ पर एक अद्भुत घटना घटी। तोतापुरी वेदांत की साधना करने वाला, अद्वैत वेदांत को मानने वाला दशनामी सन्यासी था। संसार से विरक्त, इंद्रियजीत, शरीर की आवश्यकताएं कम से कम, संसार को मिथ्या समझने वाला, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, संसारिक व्यक्ति मोहपाश में जो फंसा है, संसारिक व्यक्ति जो बंधनों में फंसा है, उसका उसे कोई अनुभव नहीं था। वो अपनी एक साधना में मगन रहता था। भक्ति उसके लिए मिथ्या थी। जो भी साकार स्वरूप के भगवान उस समय जो मान्यताएं थी उसे वो मूर्खता समझता था। ऐसा यह अद्वैत वेदांतिन सन्यासी दक्षिणेश्वर में जब आता है तो उसकी मुलाकात वहां पर मंदिर का वो जो पुजारी था रामकृष्ण परमहंस, उससे उसकी मुलाकात होती है। मनुष्य इतिहास का शायद ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है रामकृष्ण, जिन्होंने हर धर्म की साधना की। केवल साधना नहीं की परंतु जो तथ्य थे, धर्म के सिद्धांत थे, उनका अनुभव किया। काली के भक्त थे। तोतापुरी ने कहा कि क्या तुम सन्यासी बनना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ, पर उन्होंने कहा मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। तोतापुरी पूछते हैं कौन सी माँ? वो कहते हैं काली माँ। वो कहता है जाओ पूछ के आओ। वो जाते हैं, पूछ कर आते हैं और कहते हैं कि माँ ने हाँ कहा है। संन्यास दीक्षा होती है गुप्त रूप से उसी जंगल में और वो फिर उसकी साधना वहां आरंभ करते हैं। एक कुटिया में बिठाते हैं और उसको वेदांत के सिद्धांत समझाते हैं कि संसार मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, यह जगत मिथ्या है, यहां पर सब कुछ व्यर्थ है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। वो कहते हैं कि उस निराकार पर ध्यान लगाओ। तो रामकृष्ण बैठते हैं निराकार पर ध्यान लगाने के लिए, परंतु बार बार आंखों के सामने काली की तस्वीर की छवि आती है। तोतापुरी कहते हैं संसार से अपनी बुद्धि को हटा दो और एक में लगाओ। वो प्रयत्न करते हैं, संसार से तो हट जाती है बुद्धि, परंतु काली का चित्र बार बार सामने आता है। वो कहते हैं कि मैं नहीं लगा सकता, मैं क्या करूं, मेरी मां मेरे सामने आती है। वो कहते हैं कि एक तलवार लो और काली के दो टुकड़े कर दो। रामकृष्ण कहते हैं मैं तलवार कहां से लाऊं, तलवार कहां से आएगी? वो कहते हैं वहीं से जहां से काली आई। तो वो बैठते हैं, तोतापुरी इधर उधर ढूंढते हैं, कांच का एक टुकड़ा उठाते हैं और उसके मस्तक पर एक निशान करते हैं और कहते हैं अब यहां पर अपनी बुद्धि को केंद्रित करो। और रामकृष्ण बैठ जाते हैं। एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, और तोतापुरी देखते रहते हैं। जिस तोतापुरी को इस अवस्था को पाने के लिए 40 साल लगे थे उसके लिए यह युवक केवल 3 दिन में शरीर के भान से, शरीर की चेतना से जैसे बुद्धि परे चली गई, द्वैत जो था वो समाप्त हुआ और अद्वैत अवस्था आ गई। सारा ध्यान, सारा केंद्र एक जगह स्थिर कर दिया। आश्चर्य होता है तोतापुरी को, ये कौन है, कौन पुरुष है कि इस अवस्था को जिसने तुरंत पा लिया, ऐसी एकाग्रता, उसी एकाग्र चित्त अवस्था में, उसी निर्विकल्प अवस्था में, उसी निर्विकल्प समाधि की अवस्था में रामकृष्ण 3 दिन 3 रात शरीर जैसे है ही नहीं, शरीर खो गया, इंद्रिय की चंचलता समाप्त हो गई, मन में जो द्वैत था समाप्त हुआ, एक रस स्थिति, एक रस अवस्था को वो पा लेते हैं। तोतापुरी उनसे कहता है, एक कांच का टुकड़ा लेकर यहां निशान करते हैं, यहां पर बुद्धि को एकाग्र करो। ये कहानी तब की है जब भगवान का आगमन संसार में हुआ नहीं, परंतु द्वापर से ही संसार में महान आत्माएं हुई है जिन्होंने ऐसी विलक्षण एकाग्रता को प्राप्त किया जिसमें संसार समाप्त हो गया। भगवान जब धरा पर आ रहे हैं तो भी एक ऐसी साधना सिखा रहे हैं जिसमें बुद्धि संपूर्ण एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए, दत्तचित्त हो जाए, क्योंकि इसी एकाग्रता की अवस्था में जीवन के राज, सृष्टि के भेद, जीवन की मिस्ट्री, जो रहस्य है वो क्या है, समझ में आता है। जब तक बुद्धि बिखरी हुई है, ना तो संसार में और ना ही अलौकिक संसार में कुछ पाया जा सकता है। सूरज की किरण एकाग्र होगी तो ही आग निर्माण होगी। जब तक बुद्धि भटक रही है, बिखरी हुई है, तितर बितर भाग रही है, तब तक कुछ भी असाधारण घटना अध्यात्म जगत में और ना ही उस जगत में घट सकती है। तो आज की अव्यक्त मुरली एकाग्रता पर है। मुरली बहुत बड़ी है, हम कुछ 8 बातें इस मुरली से लेंगे जो पार्टियों से मुलाकात है वो कहीं कभी और। 8 मुख्य बिंदु। सबसे पहला एकाग्रता। एकाग्रता में एकाग्रता की परिभाषा, 4 परिभाषा, एकाग्रता के 8 फायदे, एकाग्रता का प्रयोग, भविष्य की कुछ भविष्यवाणियां, प्रिडिक्शंस, और हम ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या। तो सबसे पहले बाबा ने बताया एकाग्रता की परिभाषा। एकाग्रता अर्थात क्या परिभाषा दी एकाग्रता अर्थात एक ही समय एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाना, अर्थात एकाग्रता। एक ही समय एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाना, अर्थात एकाग्रता। ये पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा एक की लगन में मगन हो जाना एकाग्रता है। तीसरी परिभाषा एक बाप के संकल्प में स्थित हो जाना, और चौथी परिभाषा एक बाप से सर्व प्राप्तिया, एक ही एक। ये चार परिभाषाएं दी है एकाग्रता की। एकाग्रता अर्थात केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं, संसार की एकाग्रता की परिभाषा और भगवान की एकाग्रता की परिभाषा में अंतर है। एकाग्रता आवश्यक है ध्यान के लिए, परंतु एकाग्रता ध्यान नहीं। कॉन्सेंट्रेशन अलोन इज नॉट मेडिटेशन। एकाग्रता आवश्यक जरूर है, परंतु एकाग्रता, क्योंकि व्यक्ति किसी पर भी एकाग्र कर सकता है, तो क्या वो एकाग्रता योग होगा? एकाग्रता योग नहीं, परंतु एकाग्रता आवश्यक जरूर है। एकाग्रता महत्वपूर्ण घटक है योग का, परंतु खाली कॉन्सेंट्रेशन योग नहीं। परंतु भगवान की जो परिभाषा है एकाग्रता की, वे कुछ और ही है। वो केवल फोकसिंग अटेंशन नहीं है, केवल अवधान को एक जगह स्थिर करना नहीं। एकाग्रता अर्थात एक समय एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाना, टिक जाना, एक शक्तिशाली संकल्प लेना, उसमें स्थित हो जाना, टिक जाना, केवल रटना नहीं। रटने से अनुभव नहीं होगा। तोता रटन अनुभव नहीं बन सकता। एकाग्रता अर्थात एक शुद्ध संकल्प में स्थित होना, लंबा समय उसमें रहना। एकाग्रता अर्थात एक की लगन में मगन हो जाना, एक में खो जाना, यह एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात एक बाप के अतिरिक्त और कोई संकल्प ना आए, सारे संसार से बुद्धि हट जाए और एक में स्थिर हो जाए, अर्थात एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात एक से सर्व प्राप्तिया, एक ही एक, यह एक की अवस्था एकाग्रता है। और जब ऐसी एकाग्रता नहीं है और बुद्धि बिखरी हुई है, तो कुछ भी हासिल नहीं होता, कोई भी अनुभव नहीं होता, केवल रटन होता है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान, उससे सारे संबंध, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सतयुग, सेवाएं, बाप का परिचय, केवल मुख से बोला जा रहा है, अनुभव कुछ नहीं है। कोर्स कराया जा रहा है, अनुभव कुछ नहीं। जैसे दिखाया एक साधु के आश्रम में एक पेड़ था जहां पर बहुत सारे तोते थे, और वो सारे तोते एक ही चीज रटते थे। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, पर हम जाएंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं। एक दिन साधु कहीं बाहर जाता है भिक्षा के लिए, एक शिकारी आ जाता है और देखता है, वाह इतने सारे तोते, लालच, जाल निकालता है, पर जैसे ही जाल निकालता है तोते रटने लगते हैं, बोलने लगते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर हम फंसेंगे नहीं। एकदम आश्चर्य होता है, इतने प्रशिक्षित, वेल एजुकेटेड तोते, इतनी ट्रेनिंग लिए हुए, इनको फंसना तो बहुत मुश्किल है। परंतु थका हुआ होता है तो उसी पेड़ के नीचे अपना जाल डालता है, एक दो अमरूद के टुकड़े डालता है, सोचता है कोई बुद्धू तोता तो होगा ही जो आके इसमें फंस जाएगा, और सो जाता है। जब उठता है तो आवाज आती है उसको सभी तोतों की एक साथ, शिकारी आएगा, जाल डालेगा पर हम फंसेंगे नहीं, परंतु देखता है सारे ही तोते फंस गए और बोले जा रहे हैं, बोल रहे हैं परंतु फंस चुके हैं, फिर भी बोल ही रहे हैं। ज्ञान अनुभव है जो हम दूसरों को सुनाएं, उसका हमें खुद भी अनुभव करना है। सुनाना भी तो है पर अनुभव भी करना है साथ साथ। तो एकाग्रता की चार परिभाषाएं, एकाग्रता अर्थात एक समय एक शुद्ध संकल्प में स्थित होना, एकाग्रता अर्थात एक की लगन में मगन हो जाना, एकाग्रता अर्थात एक बाप के सिवा और कोई संकल्प नहीं, एकाग्रता अर्थात एक से सर्व प्राप्तियां एक ही एक। एकाग्रता के विषय में परिभाषा बाबा ने बताई, आठ फायदे गिनाए हैं एकाग्रता के। सबसे पहला, जहां एकाग्रता होगी वहां क्या होगा, सदा सर्वशक्तियां साथ होगी, और जहां सर्वशक्तियां है वहां सफलता होगी। जितने भी महान कार्य संसार में हुए हैं इसी एकाग्रता की शक्ति के द्वारा हुए हैं। जब माइंड फोकस हो जाता है किसी एक चीज पर, तभी उसकी बारीकियां, उसके अंदर जो सूक्ष्मताएं हैं वो समझ में आती है। और एकाग्रता जीवन में हर जगह उपयोगी है। सुबह से लेकर रात तक यदि हम अपनी दिनचर्या को देखें तो हर जगह एकाग्रता चाहिए। अमृत वेला एकाग्रता चाहिए, मुरली सुनते समय एकाग्रता चाहिए, क्योंकि मुरली सुन रहे और बुद्धि एकाग्र नहीं तो कुछ भी पता नहीं। बुद्धि एक पांच मिनट के लिए कहीं और चली गई तो उस पांच मिनट में जो सुना जैसे सुना ही नहीं। सुनते समय, भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय, चलते समय, उठते समय, कार्य करते समय, किसी से बात कर रहे हैं, वार्तालाप के समय, ड्राइविंग कर रहे हैं, जीवन के प्रत्येक घटना में एकाग्रता चाहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज है जिसमें बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए, वो कौन सी, बहुत काम की चीज है इधर भी और उस संसार में भी, कौन सी, नींद। पढ़ाई, स्टूडेंट्स को एकाग्रता चाहिए और पैसे गिनते समय एकाग्रता चाहिए कि नहीं, बहुत ज्यादा चाहिए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। और जितनी ज्यादा एकाग्रता उतनी ज्यादा ग्रहण, उतना ज्यादा हम चीजों को ग्रहण कर सकेंगे। कुछ पढ़ रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, सब पढ़ते हैं, परंतु जितनी ज्यादा एकाग्रता उतनी ज्यादा बारीकी और उतनी ज्यादा गहराई में हम जा सकेंगे। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, सुन लिया और काम पूरा हुआ, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी याद नहीं। और जो याद ही नहीं, जब परिस्थिति नहीं है, जब साइलेंस है, तो जब परिस्थिति होगी और जब हंगामा होगा और जब संसार पूरा एक बड़ा मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगा, तब कहां से एकाग्रता आएगी। पढ़ते समय, सुनते समय, लिखते समय, हर चीज हर कार्य करते समय ज्ञान योग धारणा सेवा, सेवाओं में एकाग्रता नहीं तो बार बार गलतियां होगी, छोटी छोटी बातों में गलतियां होगी। तो ये सबसे पहला फायदा, सफलता की चाबी है। कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू सक्सेस। दूसरा फायदा, आठ फायदे हैं, दूसरा फायदा सबने सुनी है ना, मुरली, एकाग्रता से कि कम एकाग्रता से सुनी, दूसरा है कलेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। जब एक श्रेष्ठ आत्मा यदि एकाग्र हो जाए तो कमाल कर सकता है, कर सकती है आत्मा, यदि बहुत सारी संगठित रूप से समग्र चेतनाएं इंटीग्रेटेड सोल्स एकाग्र हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। जब एक साथ सारी आत्माएं एक संकल्प में स्थित हो जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। संसार में भी एक संकल्प में जब आत्माएं स्थित हो जाती है तो कुछ मिरेकल होते हैं। एक लौकिक दुनिया का उदाहरण है, 1982 अमिताभ बच्चन इंजरी हुई थी शूटिंग के दरमियान, एब्डोमिनल इंजरी, बॉवल परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, सेप्टिसिमिया, एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस होने लगे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, लंग्स में इन्फेक्शन, बचने के चांसेस बहुत कम थे, सेकंड ऑपरेशन, कितना सारा खून चढ़ाया गया, सारे देश भर में प्रार्थनाएं हुई थी, एक ही संकल्प, सारे देश भर में गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, सब जगह बोर्ड्स, होर्डिंग्स, क्या क्या लगे थे, उपवास, सबका एक ही संकल्प कि वो बच जाए। एकदम होपलेस स्टेज में थे, एज इफ बस अब समाप्त हो जाएगा। एक एकत्र संकल्प, वो बच गए। संगठित एकाग्रता, एक संकल्प में स्थित हो जाना। आज थर्ड संडे सारे विश्व भर में इंटरनेशनल योग, एक साथ जब आत्माएं बैठती है उसमें अपना योगदान देना बहुत बड़ी सेवा है। आज फादर्स डे भी है, फादर्स डे है या संडे है, संडे है या फादर्स डे है, दोनों है। बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती, दोनों है। तो जब एक श्रेष्ठ आत्मा की एकाग्रता कमाल कर सकती है तो इतनी सारी श्रेष्ठ आत्माओं की एकाग्रता क्या कुछ नहीं कर सकती। तो एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास सबके साथ, ये दूसरा फायदा। नीचे शांतिवन में बहुत सारी माताएं आई है, कितनी आई है, 12,000, 10,000 से 12,000। इतना बड़ा संगठन श्रेष्ठ आत्माओं का, तो अभी हम एक अभ्यास करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। संसार की महान आत्माएं, वो सभी माताएं वहां है, फरिश्ते रूप में स्थित हो जाना और उस डायमंड हॉल में, डायमंड हॉल की स्टेज पर हम खड़े हो जाएंगे इस संकल्प के साथ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। और जितनी आत्माएं हमारे सम्मुख है उन एक एक माता, एक एक आत्मा के जीवन का, घर का विघ्न समाप्त हो जाए, ऐसी विघ्न विनाशक की शक्तिशाली किरणें फैलाएंगे। चले मैं एक विघ्न विनाशक फरिश्ता हूं। शिव शक्ति अवतार भारत की जगत जननी माताएं मेरे सम्मुख है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। संसार का कल्याण करने वाली ये माता है। इनके जीवन के सभी विघ्न नष्ट हो रहे हैं। मैं विघ्न विनाशक फरिश्ता मुझसे विघ्न विनाशक की किरणें निकल एक एक आत्मा को निर्विघ्न बना रही है। संपूर्ण वातावरण विघ्नों से मुक्त, एक एक आत्मा में एकाग्रता की शक्ति भर रही है। एक एक आत्मा एक बाप की लगन में मगन हो गई है। सभी के मन के बोझ समाप्त, जीवन के विघ्न नष्ट हो गए हैं। एक नव ब्राह्मण जीवन की शुरुआत फिर से, एक निर्विघ्न जीवन। तीसरा फायदा स्पष्टता और श्रेष्ठता। एकाग्रता से क्या होगा? स्पष्टता आएगी और श्रेष्ठता आएगी। जीवन उलझनों में उलझा है, जटिलताओं में उलझा है। उधेड़ बुन बुनना उधेड़ना बुनना उधेड़ना। एक एक आत्मा चक्र में फंसी है। संबंध, स्वभाव, संस्कार, आज का वरदान, इन सभी उलझनों से निकलने के लिए बुद्धि एकाग्र चाहिए। अपने ही जीवन को हम देख सके कि पिछले 6 मास, 1 साल, 5 साल, 10 साल में जो कुछ हो रहा है वो ठीक है या गड़बड़ है। अपने ही जीवन की गहराई में जाने के लिए चेतना संपूर्ण एकाग्र चाहिए। यदि बुद्धि बिखरी है तो वही वही गलतियां जो पहले की है फिर होगी। वही वही संबंध जिन संबंधों ने दुख दिए थे उन्हीं संबंधों को और जटिल बनाएंगे या वैसे ही नए संबंध क्रिएट करेंगे दुखदाई, क्योंकि सीख नहीं रहे अनुभव से, स्पष्टता नहीं रहेगी, जीवन धुंधला बोथला सा। स्पष्टता के लिए, क्लैरिटी के लिए, श्रेष्ठता के लिए, ग्रेटनेस के लिए एकाग्रता चाहिए। तो एकाग्रता के छोटे छोटे अभ्यास करने हैं। जब सुन रहे हैं, क्लास में बैठे हैं या मुरली क्लास में बैठे हैं, एकदम जो सामने बैठ के सुना रहा है, या जो शब्द सुन रहे हैं, या जो क्लास सुन रहे, ऑडियो सुन रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, सोचो कि बस पढ़ना है, बस सुनना है, और कोई दूसरा कार्य नहीं करना है। इस समय केवल ये ही एक कार्य करना है। छोटे छोटे एकाग्रता के प्रयोग, भोजन कर रहे हैं केवल भोजन, चल रहे हैं केवल चल रहे हैं। मल्टीटास्किंग एक कारण है एकाग्रता कम होने का। कई सारे कार्य एक साथ किए जा रहे हैं। फोकस ऑफ द माइंड शुड बी ऑन वन, मन को एक जगह फोकस करना, स्थिर कर देना, एक में स्थिर कर देना। उसके लिए सारे दिन भर में भी एकाग्रता के छोटे छोटे अभ्यास होते रहने चाहिए। एकाग्रता के अभ्यास, हम योग के अभ्यास नहीं कह रहे, एक अभ्यास है बैठना प्रकृति के सानिध्य में और जितनी आवाजें आ रही है केवल उन आवाजों को सुनना। हवा, पंछी, तितलियां, कलकल निनाद करते झरने, बारिश, आसमान, बादल, बदलियां, कोई भी आवाज केवल सुनना एकाग्र होकर, कोई भी आवाज छूटने ना पाए। ये एकाग्रता के एक्सपेरिमेंट्स है। या फिर यहीं पर बैठे या यहीं कहीं आसपास आंख बंद करके 5 मिनट केवल सुनना, क्या क्या सुनाई दे रहा है। गाड़ी आ रही है, गाड़ी की आवाज, कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, एकाग्र करने का अभ्यास। तो यह है तीसरा फायदा। चौथा फायदा एकाग्रता का, इन्वेंशन, स्पिरिचुअल इन्वेंशन, आध्यात्मिक आविष्कार, आध्यात्मिक खोज। जैसे वहां इन्वेंशन करने के लिए एकाग्रता चाहिए। एक साइंटिस्ट एब्सेंट माइंडेड होता है, उसे कुछ पता नहीं रहता है क्या हो रहा है, अपने काम में इतना डूबा हुआ होता है, इतना एकाग्र होता है, डेट कौन सी है, टाइम क्या है, कुछ खबर नहीं होती है उसको। तब जाके कहीं महान आविष्कार निकलते हैं। क्या मुरली पढ़ते समय या सुनते समय या क्लास सुनते समय हम इतने एकाग्र है, और जब तक नहीं तब तक वो ग्रहण भी नहीं होगा। बहुत पढ़ना नहीं है, कम पढ़ना, परंतु 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ताकि वो ग्रहण हो जाए। वो जो साधारण से शब्द है उनके अंदर छिपा हुआ गुणार्थ, डीप मीनिंग, कोनोटेशन ग्रहण हम कर ले। शायद जीवन जहां उलझा है, जीवन में जो कांटा चुभा है, उस कांटे को निकालने की विधि, उत्तर उसी वाक्य में है मुरली के, जहां हम एकाग्र हो जाए। तो इन्वेंशन करनी है। जैसे आउटसाइड इन्वेंशंस है, साइंटिफिक इन्वेंशंस है, वो इंद्रियों का जगत है। साइंस इंद्रियों का जगत है, दिखाई नहीं देता दूर की चीजें, टीवी, सुनाई नहीं देता मोबाइल, इंद्रिय है। अध्यात्म इंद्रियों से परे का विषय है, और इंद्रियों से परे अगर खोज करनी है तो जबरदस्त एकाग्रता चाहिए, डीप कॉन्सेंट्रेशन। यदि अध्यात्म के रास, जो जीवन का तिलिस्म है, मिस्ट्री है, उसको समझना है तो कितनी एकाग्रता चाहिए, कितनी हमारी फ्रीक्वेंसी स्पीकर के साथ मैच करनी चाहिए। स्पीकर इधर है, ऑडियंस इधर, अव्यक्त वाणी चल रही है, अव्यक्त प्रवाह यहां से बह रहा है, हम व्यक्त में हैं, क्या व्यक्त में जो स्थित है शब्द पढ़ सकेंगे, परंतु शब्द अव्यक्त से निकले हैं, उन अव्यक्त प्रवाह में बहने के लिए, समझने के लिए, उस अव्यक्त स्रोत से जुड़ने के लिए, तदात्म के लिए, हमें भी उसी लेवल पर, उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होना होगा। तो स्पिरिचुअल इन्वेंशंस यदि करनी है तो माइंड को कंसंट्रेट करने का अभ्यास करना है, एक चीज में केंद्रित। जैसे वरदान ले लिया, इतना उसमें एकाग्र हो गए, इतना उसमें एकाग्र हो गए कि उसमें से कुछ नए राज खुल जाएंगे, कुछ नई समझ, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग हमारे हाथ में आएगी। जो अब तक नहीं समझ में आया था, वो उत्तर, जो अनुत्तर था, मिल जाएगा। तो चौथा फायदा एकाग्रता से इन्वेंशन। पांचवा फायदा, जो भटकना है वो बंद हो जाएगा। मन चंचल है, 10 मिनट भी उसको कहो कि कुछ नहीं करना है, केवल बैठना है, तो भटकता है। चंचलता उसका स्वभाव है। चंचलम ही मनः कृष्ण, मैं क्या करूं हे गोविंद, मेरा मन चंचल है। इस चंचल मन को रोक देना, स्थिर कर देना, उसे काम देना है, तुम्हें इसके ऊपर एकाग्र हो जाना है। त्राटक करते हैं भक्ति मार्ग में, दिए का या कोई प्रकाश का स्रोत हो उस पर एकाग्र करते हैं, वैसे ही माइंड को कोई एक संकल्प दे देना और उसको कहना अब इस पर सोचो, एक ही संकल्प, एक ही पावरफुल थॉट। पांचवा। छठवा, देह और देह की दुनिया भूल जाएगी। जैसे रामकृष्ण का बताया, जैसे ही एकाग्र हुए 3 दिन तक वहीं बैठे रहे, 3 दिन 3 रात कुछ खबर ही नहीं संसार की, देह और देह की दुनिया भूल जाए, ऐसी एकाग्रता। सातवा, एकाग्रता का इसे प्रयोग कहा जाएगा। 4 बातें इसमें है और वो ही 4 बातें रोज अमृत वेले सब ब्राह्मणों को करनी है। ये वास्तविक प्रयोग है एकाग्रता का, सकाश जिसे कहेंगे, आत्माओं को आह्वान करना, आत्माओं को मैसेज देना, आत्माओं की आवाज कैच करना, और लास्ट सहयोग देना। ये चारों काम के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए, और एकाग्रता से दी हुई सकाश ही पहुंचती है। जब हमारी बुद्धि भटक रही है और हम इमर्ज कर रहे हैं संसार की आत्माओं को, इसको सकाश, उसको सकाश, और हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं तो पहुंचेगी नहीं। जब हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे समझे कि जिसको हमने सकाश दी उसको मिली या नहीं, मैसेज डिलीवर्ड और नॉट, यदि हमने किसी को सकाश दी और हम उस सकाश के गहरे अनुभव में खो जाए, इतनी बुद्धि माइंड एकाग्र हो जाए, तब समझ लेना मैसेज डिलीवर्ड। हमको खुद पूछने की आवश्यकता नहीं होगी किसी को, गया कि नहीं गया, मैंने सकाश दी मिला कि नहीं मिला, उसको भी पूछने की आवश्यकता नहीं जिसको दिया, हमने दी तो जाएगी। परंतु उस एकाग्र चित्त अवस्था में वो दी जाए, उस अचंचल मन की अवस्था में वो दी जाए, उस धैर्यम अवस्था में वो दी जाए, उस स्थिर चित्त अवस्था में, दत्त चित्त अवस्था में, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड की अवस्था में वो सकाश दी जाए। तो आत्माओं को आह्वान करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं की पुकार सुनना, आत्माओं को सकाश देना, आत्माओं की मदद करना, सहयोग देना, आत्माओं के जीवन के विघ्न दूर करना बिना उनसे बात किए, बिना उनको बताए, चुपचाप गुप्त रीति से प्रेम देना। जो हमारे प्रति 100% निगेटिव है कोई आत्मा, हमने कुछ नहीं किया फिर भी निगेटिव है, फिर भी निंदा करती है, ग्लानी करती है, अपमान करती है, बात बात पर टांग अड़ाती है, क्या करेंगे उसके लिए? बातों से समझाएंगे, बैठ के काउंसिलिंग सेशन करेंगे, बैठ के डिस्कशन करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। सकाश, प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी देनी है आत्माओं को। ताकि मन में जो निगेटिव समाया हुआ है, क्योंकि निगेटिव बहुत ज्यादा है, सुनी सुनाई बातें, इसने ये कहा उसने वो कहा, कोई एक के बारे में 10 लोगों ने हमें 10 बातें बता दी और हमारे मन में उसके प्रति वो भाव बैठ गया कि ये ऐसा है, जबकि 10 बातें जो सुनी सब झूठ है, सत्य का किसी को भी पता नहीं, सबने यहां वहां से सुना बस, और हमने अपनी भावनाओं को गलत कर दिया। इसके लिए आत्माओं को बात इमर्ज करना, बातें करना, शुभ भावनाएं देना, प्योर पॉजिटिव एनर्जी देना, ये है छठवा या सातवा। और लास्ट, बाप समान स्थिति का अनुभव, एकाग्रता। एक है एकाग्रता की प्रैक्टिस करना, एक है एकाग्र अवस्था में स्थित हो जाना। मैं बाप समान आत्मा हूं, केवल रटना नहीं परंतु स्थित हो जाना, अनुभव करना कि मैं हूं, फिर वो सारे गुण आने लगेंगे मुझ में। तो एकाग्रता की 8 फायदे हैं। कौन कौन से, फिर से गिनाएंगे। पहला सर्वशक्तियां, जहां एकाग्रता है वहां सर्वशक्तियां है, और जहां सर्वशक्तियां है वहां सक्सेस सफलता है। दूसरा, जहां एकाग्रता है वहां कलेक्टिव एकाग्रता के विषय में बाबा ने कहा, संगठित एकाग्रता, क्या कुछ नहीं कर सकती। दूसरा, तीसरा स्पष्टता और श्रेष्ठता, जीवन अस्पष्ट है, कंफ्यूज्ड, रिलेशनशिप्स कंफ्यूज्ड है, एक ही रिलेशनशिप में 100 पड़ते हैं, 2 व्यक्तियों के जो संबंध है उसमें हजारों, कितनी सारी पड़ते हैं, कभी घृणा, कभी प्रेम, कभी द्वेष, कभी ईर्ष्या, कभी लगता है उसको एंगर क्रोध, कभी लगता है जाके माफी मांगू, माफी मांगने जाते हैं और क्रोध करके डांट के आते हैं, क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है, गए थे माफी मांगने और डांट के आ गए बेचारे को, फिर पश्चाताप। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता है संबंधों में। स्पष्टता तब आएगी जब बुद्धि एकाग्र होगी, एकाग्र बुद्धि ही देख सकेंगे कि ये जो संबंध 2 व्यक्तियों के बीच हो रहा है, इसमें कहां पर किस पॉइंट ऑफ टाइम में गड़बड़ हुई, हमारी तरफ से या उस तरफ से, कौन सी एक्सपेक्टेशंस बीच में आ गई, हमारी तरफ से या उस तरफ से, वो समझने के लिए एकाग्रता चाहिए। तो तीसरा, चौथा इन्वेंशन, स्पिरिचुअल इन्वेंशन करने, वही 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 पिटी पिटाई लीक पर नहीं चलना है, नए मार्ग क्रिएट करने हैं, नई खोजें करनी है, ज्ञान की, योग के, धारणा के, सेवाओं की, सेवाओं के नई नई मेथड्स, योग के नए नए प्रयोग। ये नहीं समझना कि सबने सब कर रखा है, कुछ नहीं किया किसी ने, सोचना अब करना है, वो आश्चर्य लाना है कि बहुत कुछ जानना बाकी है, आई नो का ये जो भ्रम है इससे मुक्त करना है स्वयं को, इस पॉइंट पर आना है, मुझे कुछ भी पता नहीं, छोटे बच्चे की भांति हो जाना, जो पूछता है ये क्या है, वो क्या है, यहां क्या है, वहां क्या है, ये मुरली क्या है, ये मधुबन क्या है, क्या है इसका महत्व, हर चीज के प्रति आश्चर्य से भरना है, ज्ञान के संबंध में विस्मय से भरना है, विस्मय से देखना है मुरली में क्या है, कौन सी नई बातें हैं, कौन सा नया संबंध है, तब ज्ञान की शुरुआत होगी और हम इस भ्रम से मुक्त होंगे कि हम जानते हैं। ये जानना कि कुछ भी नहीं जाना, ये जानना अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। स्टूडेंट अर्थात जानते रहे, जानते रहे, जानते रहे, नई नई बातें पता चलेगी। उस दिन क्लास में दादी जानकी ने कितनी 3 स्टेजेस बताई। पहली स्टेज, बाप की गोद में हूं। पहली स्टेज, माला का मन का। सेकंड, बाप की गोद में। और तीसरी, पलकों में बैठ के जा रहे हैं बाबा के साथ। 3 योग की अवस्थाएं हो सकती है। कहां से निकला ये? लंबे समय से बुद्धि को शुद्ध रखा है, पवित्र रखा है। ऐसी पवित्र बुद्धि में समय पर वो पॉइंट बाबा देगा, टच कराएगा, जिससे असंख्य आत्माओं का कल्याण स्वतः हो जाएगा। कितनी बड़ी सेवा है। तो हमारी बुद्धि भी ऐसी दिव्य बन जाए। रूहानी शक्ति कहा आज की मुरली में बाबा ने एकाग्रता की शक्ति को, गुप्त शक्ति है जिसके जिससे अनुभवी मूर्त बनोगे अंत में। गुप्त शक्ति है, रूहानी शक्ति है, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर, सीक्रेट एनर्जी है ये एकाग्र होने की। अगला भटकना बंद। अगला देह और देह की दुनिया से परे और जितना समय है केवल जिसमें मगन है वो याद रहेगा। अगला सकाश और लास्ट अनुभव बाप समान। तो ये 8 फायदे, 4 परिभाषा, ये था एकाग्रता। दूसरा है एकांत, इसका साधन है एकांत। एकांतवासी बनने का अभ्यास कब करना है अभ्यास? अब, बाद में नहीं। एक के अंत में खोने का, बाद में तो हंगामे होंगे, उस समय बनना ये वास्तविक। अब जिसने लंबा समय किया है वही कर सकेगा। एक तीरंदाज होता है यंग, जिसे बहुत घमंड होता है कि मैं सबसे बेस्ट आर्चर, सबसे बेस्ट तीरंदाज हूं, सब जगह गांव गांव में घूमता है, सबको हराता है। एक गांव में पहुंचता है, उसे पता चलता है एक बूढ़ा है कोई जो अपने युवा काल में और सब लोग मानते हैं ये बेस्ट है, वो सोचता है इसको हरा देता हूं, और उसके पास जाता है और उसको अपनी तीरंदाजी दिखाता है। एक तीर चलाता है, वो सीधा बीच में जो टारगेट होता है वहां जाके लगता है। दूसरा तीर चलाता है, वो उस तीर को चीर कर दो भागों में चीर कर अंदर जाता है। वो कहता है क्या ख्याल है, क्या ऐसा कर सकते हो? उस बूढ़े व्यक्ति को कहता है वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कर सकता हूं, पहले मेरी एक काम करो, मेरे साथ चलो। वो उसे ले जाता है, एक चट्टान होती है नीचे बहुत बड़ी खाई और एक पुल होता है, बिल्कुल अभी तब गिरा अब गिरा चरमराया हुआ पुल जो कि उस ओर जा रहा होता है, कभी भी गिर सकता है, और नीचे बहुत जबरदस्त खाई। तो वो बूढ़ा आदमी उस पुल पर चढ़ता है, बीचों बीच जाता है पुल के, अपना धनुष बाण निकालता है और एक झाड़ पर तीर चलाता है और आराम से वापस आ जाता है। तो और ये युवक देखते रहता है, अरे बाप रे, थोड़ा सा भी पिसले तो पूरा गए नीचे। वो कहता है क्या ख्याल है, अब ये करके दिखाओ। वहां बैठकर तीर चलाना आसान है, यहां बैठ के चल के चलना के दिखाओ। हंगामों के बीच चारों तरफ हलचल, तब तीर चला के दिखाना। उसके लिए वो उससे कहते हैं तुमने धनुष बाण तो सीखा है, परंतु अभी मन को स्थिर करना, मन को एकाग्र करना, मन को कॉन्सेंट्रेटेड करना सीखो, ताकि उस के बीच में खड़ा रहकर भी तीर चला सको। यहां पर यदि कोई एक वुडन लॉक जिसको कहते हैं, एक लकड़ी का तख्ता रख दिया जाए जमीन पर, हमसे कहे चलो इसके ऊपर, तो हम आराम से चलेंगे। अगर वही तख्ता दो बिल्डिंग है उसके बीच रख दिया जाए, अब कहा कि चलो, तख्ता वही है, एक तो नीचे जमीन पर, एक दो बिल्डिंग के बीच, तो चल पाएंगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो दूसरी है एकांतवासी, अर्थात एक के अंत में खो जाने का अभी अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तभी अंत में हो सकेंगे। तीसरी बात बताई बाबा ने, अभ्यास, स्व साधना, स्व अभ्यास। अभिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं करो, एकाग्रता की, एकांत की, एक ही नहीं केवल भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं करो सारे दिन भर में। बाबा ने एक बताई है एक अंत में खोना, पर ऐसी बहुत सारी साधनाएं हो सकती है, जैसे आत्मिक स्थिति में स्थित होना, स्वमान का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि, चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान की पॉइंट्स को याद करने का प्रयत्न करना, ये सारे अलग अलग भिन्न भिन्न अभ्यास है, क्योंकि इमरजेंसी केसेस आने वाली है। और तुम्हारा दावा है कि ये जो है यज्ञ, इस संसार का सबसे बड़ा वैश्विक यूनिवर्सल ग्लोबल हॉस्पिटल है, जहां पर अविनाशी हम निरोगी बनाते हैं आत्माओं को, तो तुम्हारे पास होपलेस केसेस विद वर्स्ट प्रोग्नोसिस केसेस आएगी, उनके साथ चार चीजें करनी है। क्या क्या? क्या क्या करना है आत्माओं के साथ? सबसे पहला उन आत्माओं को क्या देना है? वरदान अमर भव का। दूसरा श्वास साहस का। तीसरा शक्तिशाली बनाना है, और याद प्यार में कहा है उनको दिल खुश बनाना है। ये चार चीजें आत्माओं के साथ करनी पड़ेगी। तो अभी फिर से एक प्रयोग करेंगे, अपनी आंखों के सामने अलर्ट होके बैठेंगे, अपनी आंखों के सामने संसार की दुखी तड़पती हुई होपलेस दिल शिकस्त उदास निर्बल असहाय आत्माओं को देखना और उनको वरदान देना, साहस का ऑक्सीजन देना, शक्तिशाली बनाना, दिल खुश बनाना, ऐसी शक्तिशाली सकाश देंगे। चौथी बात शॉर्टकट। एक शॉर्टकट बताया है बाबा ने, एक की याद में रहना, एक के गीत गाना, एक की महिमा गाना, एक शब्द को याद करना, एक का परिचय देना, ये शॉर्टकट मार्ग है। माताएं थकी हुई है, बाबा ने कहा उनको शॉर्टकट चाहिए, जो नई आत्माएं हैं उनको शॉर्टकट चाहिए, इससे ज्यादा और सहज और कुछ नहीं है। एक की याद, एक की महिमा, एक के गीत, एक का परिचय, एक की याद और एक ही शब्द याद रखना, ये चौथा पॉइंट। पांचवा आने जाने का ये मेला है। क्या है ये? आने जाने का मेला है, मधुबन भी और जीवन भी। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम। तो आ रही है आत्मा है और जा रही है, आने दो जाने दो, किसी को रोकना भी नहीं, कोई जाना चाहता है तो, और ना ही हम रोक सकते हैं किसी को। बाबा ने किन आत्माओं को देखा? नए पुराने, बाबा की नजर में सब सेम, जो नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भाषा को जानते हैं भाषा को नहीं जानते हैं सेम, जो मुरली समझते हैं मुरली नहीं समझते, बाबा ये सब नहीं देखते, बाबा एक ही चीज देखते हैं, कौन सी? प्रेम, प्यार, प्यार का प्यासा है, भावना का भूखा वह परमात्मा, वो जो समझदारी वाले हैं, जो होशियार है, चतुराई वाला प्यार है, वो बाबा को कम पसंद है, जो भोले वाले हैं, जिनका हृदय शुद्ध है उसे वो ज्यादा प्यार करता है। जीसस क्राइस्ट से पूछता है, कोई भीड़ है, इस भीड़ में इतने लोग पंडित पुरोहित सब खड़े हैं, पादरी, वो पूछते हैं बताओ तुम्हारे भगवान के प्रभु के राज्य में कौन जा सकेगा, वो सब तरफ नजर दौड़ाता है और भीड़ के पीछे एक छोटी सी बच्ची होती है, उसको अपने कंधों पर उठाता है और कहता है जिनका मन चित्त जो इन बच्चों जैसे होंगे शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन, वो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। इसका मतलब बच्चे नहीं, नहीं तो जितने बच्चे मर गए सब चले जाएंगे स्वर्ग में, बच्चे नहीं, जो बच्चों जैसे है, चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी जहां है, इनोसेंस जहां है, वो मेरे प्रभु के राज्य में जाएंगे, भोले भाले भावना वाले। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, माताओं से बात की बाबा ने, नाचने को कहा और गाने को कहा, कहां पर? मन में। बाबा नमस्कार करते हैं, बाबा गीत गाते हैं माताओं को, तो क्या करना है? मन में नाचना और मन में गाना, खुशी से होगा ये, अन्यथा नहीं। लास्ट दो पॉइंट, दो प्रश्न है, पार्टियों को हम छोड़ रहे हैं, कभी और लेंगे कल। दो प्रश्न है, सहज सेवा का साधन, हर्षित मुक्ता, वो निशानी है खुशी की, परंतु झूठी हर्षित मुक्ता भी हो सकती है, एक ऊपर से खुश दिखा रहे अंदर से दुखी है। सच्ची हर्षित मुक्ता एक होती है, एक होती है झूठी हर्षित मुक्ता। सच्ची हर्षित मुक्ता निशानी है आंतरिक खुशी की, उससे स्वतः ही आत्मा आकर्षित होंगी और स्वतः ही सेवा होती रहेगी। वो सेवा का वास्तविक साधन है कि पूछे क्या मिला, कौन मिला, ये एक प्रश्न पूछा। और लास्ट प्रश्न, तिलक, कौन सा तिलक लगाना है? स्मृति स्वरूप का तिलक, तख्त नशीन होंगे तख्त और वक्त, वक्तावर मुरलियों में आता है ना, शास्त्रों में एक बहुत सुंदर चीज है जो आपको काम आएगी कोर्स में बताने के लिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, कि जो ब्राह्मण वैश्य या क्षत्रिय तिलक नहीं लगाते उन्हें चंडाल कहा जाएगा। जो ब्राह्मण तिलक नहीं लगाते उन्हें चंडाल कहा जाएगा। तो यहां कौन सा तिलक लगाना है? स्मृति स्वरूप का तिलक, अगर नहीं लगाते तो डैश डैश। और दूसरी चीज, जो भी धार्मिक कार्य है यदि ब्राह्मण करता है और श्रेष्ठ कार्य करता है, वो यदि तिलक लगाए बिना करता है तो वो सारे पुण्य कर्म, वो सारी यात्राएं, वो सारे दान पुण्य सब विफल हो जाए। इसके लिए निरंतर तिलक लगा हुआ हो। तो ऐसी ये 8 बातें, सबसे पहले एकाग्रता, दूसरा एकांत, तीसरा स्व साधना स्व अभ्यास सेल्फ ट्रेनिंग सेल्फ प्रैक्टिस, चौथा शॉर्टकट, पांचवा आना जाना, भगवान किसको देखते और भगवान को क्या चाहिए, फिर माताओं के लिए कहा गाना, मन से गीत गाना और नाचना, और खुशी हर्षित मुख चेहरा चीयरफुलनेस, एंड लास्ट स्मृति स्वरूप का तिलक। ऐसे एक पॉइंट भूल गए चात्रक वाली, जो याद प्यार में आ जाएगी। ऐसे एकाग्रता से शक्तिशाली, एकाग्रता की शक्तिशाली आत्माओं को, ऐसे एकांतवासी आत्माओं को, ऐसे अभ्यास स्वरूप के चात्रक आत्माओं को, मुरली में कहा अभ्यास स्वरूप के सागर बन जाओ, अलबेला नहीं बनना है इस अभ्यास में, ऐसी आत्माओं को, ऐसे दिल शिकस्त को दिल खुश बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे सदा स्व अभ्यासी आत्माओं को, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे महावीर आत्माओं को, ऐसे नए आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।